हरे कृष्णा। श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर के भाग्यशाली ब्रह्मचारी भक्तों, भक्ति शास्त्री के पांचवे अध्याय के भगवद गीता यथारूप के अंतिम चरण में अष्टांग योग की भूमिका अष्टांग योग की भूमिका भी मुक्ति का साधन है। ये तीन श्लोक हैं, ये पांचवा विभाग है पांचवें अध्याय का। अष्टांग योग अथवा इसका दूसरा नाम है अष्टांग योग का ध्यान योग। इसको ध्यान योग कहें या अष्टांग योग कहें, उसका यहां सूत्र बताया गया है पांचवें अध्याय में सूत्र रूप से, और वो भी मुक्ति देने वाला है। जैसे निष्काम कर्म योग मुक्ति देता है, ज्ञान योग मुक्ति देता है, ऐसे अष्टांग योग या ध्यान योग भी मुक्ति देता है। तो इसका 27 और 28 श्लोक जो हैं, ये छठे अध्याय की भूमिका है, ये सूत्र रूप से ध्यान योग का वर्णन है। तो हम कौन सा श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, 27 और 28। स्पृशान कृत्वा बाहर भायां स चक्षो सचैवा अंत्रे भ्रुवः प्राणापान समाकृत्वा नासाभ्यंत्रचारिणो यतेन्द्रिया मनो बुद्धि मुनिर्मोक्षप्रायणाः विगच्छ भय क्रोधो य सदा मुक्त एव स। पहली लाइन में है स्पर्शान कृत्वा बहिर बाह्यांस, इसका भाव है स्पर्श एक इंद्री का नाम लिया है। कौन सी इंद्री का काम है स्पर्श? हाँ, त्वचा। परंतु इससे समझना चाहिए सारे इंद्रियों का काम, आंख का भी देखना, नाक का सूंघना, कान का सुनना, ये सब इसमें आ गए। तो स्पर्शान कृत्वा बाहर बाह्यांश, उनको बाहर ही रहने दो, अंदर मत आने दो। अष्टांग योग में इस लाइन के लिए, पहली लाइन के लिए एक शब्द है, उसको कहते हैं प्रत्याहार। क्या कहते हैं? प्रत्याहार। प्रत्याहार का वैसे अर्थ है संग्रह नहीं करना, कथा नहीं करना। इसका मतलब बाहर इंद्रियों के भोगों को मन में कथा नहीं करना, उसको बाहर ही छोड़ना है। तो इसके लिए अष्टांग योग में शब्द है पहली लाइन के लिए प्रत्याहार, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ? इंद्रियों के विषयों को बाहरी छोड़ देना, मन तक नहीं आने देना। स्पर्शान कृत्वा बहिर बाह्यांश, पांचों इंद्रियां, पांचों ज्ञान इंद्रियों के विषय को मन तक नहीं आने देना, बाहर ही रखना, इसको कहते हैं प्रत्याहार। दूसरा लाइन में चक्षुष, चक्षु कहते हैं आंख को, चैव अंतर भ्रवे, दोनों भ्रवों के बीच में। तो अपनी दृष्टि को वैसे नासिका के अगर भाव में, नासिका का अगर भाव कहाँ होता है, दोनों भ्रुवों के बीच में, तो नज़र इसके ऊपर रखनी है, ये दूसरी बात है। ध्यान योग में नज़र कहाँ रखनी है, नाक की चोटी पे, दोनों भ्रुवों के बीच में। क्यों, उसके दो कारण। पहला कारण, आंखें बंद नहीं करनी है क्योंकि नींद आ जाएगी, बंद कर दी तो नींद आ जाएगी। और दूसरा, सीधी खुली रखी तो इंद्रियां बाहर के विषय अंदर आ जाएंगे, कुछ देखेंगे फिर इधर जा रहा है इधर जा रहा है, तो नीचे ऐसे होगी, बाहर न बंद करनी है, न पूरी बंद करनी है और न सामने खुली रखनी है। दोनों भ्रुवों के बीच में नाक के अगर भाव पे नज़र को जमाना है, ये दूसरी लाइन है। तीसरी लाइन है, प्राणा अपानो समौ कृत्वा। प्राण और अमान अपान को, प्राण वायु जो अंदर जाती है, अपान बाहर जाती है, जो भी दो, इनको समान करना, ये प्राणायाम है, ये प्राणायाम है। प्राणायाम का लक्ष्य क्या होता है, प्राणायाम क्यों करते हैं, मन को एकाग्र करने के लिए। प्राणायाम है मन को एकाग्र करने के लिए। नासा भयंतर चारिणो, ये प्राणायाम के साथ है। प्राण और अपान को नासिका में ही ऊपर नीचे जाता है ना, उसको समान करो। इसका मतलब, एक स्थिति थी, हमने पढ़ा था प्राणायाम, एक यज्ञ था, रीचक पूर्वक और कुंभक, तो इसका मतलब कुंभक में लाना है, दोनों को समान करना है। तो उस स्थिति में अगर हमने इसको लाए तो फिर क्या करना है, ये क्या हो गया, ये अभी हो गया प्राणायाम हो गया, चले ना हो, हरे कृष्ण, प्राणायाम प्रतिहार दोनों हो गया। अब आते हैं नीचे श्लोक में, यत यत शब्द आए तो क्या समझना चाहिए, यतन करना, यतन करने का अर्थ है प्रयास करना, यति बनना। वैसे यति शब्द किसके लिए होता है, सन्यासी के लिए, यति शब्द सन्यासी के लिए। गोवर्धन में एक यतिपुरा है ना, यहाँ माधवेंद्रपुरी बैठे थे इसलिए उस जगह का नाम हो गया यतिपुरा। यतन, यतनशील होना, दो शब्द याद करो, ये छठे अध्याय में आएंगे, यतन और प्रयत्न। यतमानत प्रयत्नास, यतमानस प्रयत्ना, यतन करना चाहिए कि नीचे नहीं गिरे, प्रयत्न करना चाहिए कि आगे बढ़े। अब देखो ये दोनों का, यतन करो कि नीचे न गिरे, प्रयत्न करो कि आगे बढ़े। तो यतन और प्रयत्न दोनों शब्द हैं। तो यत, पहले शब्द यत आया, इसका मतलब संयम में रखो, बस में रखो। अब तीन चीजें हैं, इंद्रियां, मन, बुद्धि, एक लाइन में है कि नहीं श्लोक में, देखो, इंद्रियां, मन और बुद्धि को संयम में रखो। अच्छा, ये इंद्रिय मन और बुद्धि में क्या होता है, इसको संयम में क्यों रखना चाहिए, इस ये किसके, इसके अंदर किसके रहने की जगह है, कौन रहता है, काम रहता है, इच्छाएं कहाँ रहती हैं, उनके रहने की जगह क्या है, कौन सी है, इंद्रियां, मन और बुद्धि। तीसरे अध्याय में पढ़ा था ना, तीसरे अध्याय में पढ़ा है ना कि काम रूपी शत्रु के रहने की जगह है इंद्रियां, मन और बुद्धि। तो उसमें पहले किसको वश में करना चाहिए, तीसरे अध्याय में पढ़ा था, निर्णय करके बताओ पहले किसको करना चाहिए, कौन बोल रहा है इंद्रियों को, वो इंद्रियों को बोल रहा है, ये मन को बोल रहा है, और भगवान ने क्या कहा है उधर देखो, आदो इंद्रिय संयमो, पहले क्या लिखा है, इंद्रियों को संयम है, क्योंकि इंद्रियों आपके बस में है, पाओ तो आपकी मर्जी, कथा में आओ या बाहर घूमने जाओ तो आपके बस में है ना, जो चीज़ आपके बस में है उसको पहले काम करो, मन तो आपके बस में है नहीं, तो पहले इंद्रियों को संयम में करना चाहिए। मन होता ही नहीं है बस में, मन किसी के बस में होता नहीं है, ये तो कहने की बात है। इंद्रियां हो सकती हैं, आंख बंद करना हमारे बस में, करते हैं तो कर लेनी चाहिए, कोई बुरी चीज देखो आंखें बंद कर दो, ये तो कर सकते हो। तो मन बुद्धि और इंद्रियों को वश में करे योगी। अब ये इतने सारे काम करेगा वो कौन है? मुनीर, मोक्ष प्रायण। कौन है ये मुनि? है जो मोक्ष की इच्छा रखता है, मुक्ति का इच्छुक। मोक्ष प्रायण का मतलब मुक्ति का इच्छुक, जो मोक्ष चाहता है ऐसा मुनि। इतना ये करे और तीन चीजें और करे, अभी आ रहा है। विगत, विगत का मतलब छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? इच्छा, भय और क्रोध। इच्छा, भय और क्रोध को त्याग दे। इच्छा, भय और क्रोध को त्याग दे। और ऐसा कोई करेगा सह, वो व्यक्ति सदा मुक्त, वो निरंतर सदा के लिए ही मुक्त है। एव सह, उसको समझो निश्चित रूप से वो जीते जी मुक्त है। तो अब इस श्लोक के सारे शब्दों को समझ रहे हैं, एक बार देखिए अपने मन से इसको सारे को समझ रहे हैं। पहली लाइन क्या है? प्रत्याहार है। दूसरी, ध्यान को एकाग्र करना है, दृष्टि को एकाग्र करना है, नींद ना आए और बाहर न जाए। तीसरा, चौथा प्राणायाम है। पांचवें में इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को संयम में करना है। इंद्रियों को संयम में करने के लिए वैसे आसन होते हैं, इंद्रियों को संयम में करने के लिए आसन, मन को संयम करने के लिए प्राणायाम, और तीन चीजें और, इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त होना। तब वो मुनि जो मुक्ति चाहता है वो मुक्त हो जाता है, इसका अर्थ ये हुआ। ठीक है, अब आप पढ़िए प्रभुपाद जी का अनुवाद पढ़िए इसका। सबसे तो इसका मतलब वो मुनि इन सबसे मुक्त हो जाता है, तीन चीजों से मुक्त होता है। तो तीन चीज कौन सी है जिनसे मुक्त होना है? इच्छा, भय, क्रोध से मुक्त होना है। उसके लिए क्या करना है? ये सब करना है तो वो भी जीते जी मुक्त है। तो इस श्लोक के शब्दों के विषय में कोई किसी का प्रश्न है? स्पर्शान कृत्वा बाह्य स्पर्शान, क्या शब्द है? स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्याम चक्षुषचेवान्त्रभ्रवो प्राणापानौ समायुक्तौ समाकृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो। ये सब शब्द आपको समझ में आ रहे हैं कि आप देखो आपकी भाषा में बहुत सारे शब्द हैं, आप समझ सकते हो, थोड़ा प्रयास करो सबका अर्थ आपको आता है। और एक बार प्रभुपाद जी के अनुवाद को पढ़ के फिर दोबारा इसको पढ़ो, प्रभुपाद जी के अनुवाद को पढ़ के फिर इसको पढ़ो, देखो कि प्रभुपाद जी ने कौन सा शब्द संस्कृत के श्लोक का कहाँ रखा है। अभ्यास करके देखो जरा, कोई प्रभुपाद का अनुवाद पढ़ो उसमें बताओ कि ये कहाँ है श्लोक में शब्द। पहला क्या लाइन है? पहला क्या है वैकुंठ? हाँ, पहली लाइन क्या है? सब इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों को बाहर करना, ये कौन सी लाइन है? पहली, स्पर्शान कृत्वा बाह्यां से, ये वो लाइन है, ठीक है। ये जब ये आपको समझ में आया तब आप समझो कि आप गीता को समझ रहे हो। प्रभुपाद जी के लिखे हुए संस्कृत को उनके अनुवाद में ढूंढो तो समझो कि आप समझ के पढ़ रहे हो। अब पहली लाइन समझ में आ गई, दूसरी लाइन में क्या लिखा है? हाँ, ये दूसरी लाइन है सीधी। हाँ, चक्षुषा चेवांत्र भरुव, दूसरी लाइन है ना सीधी। अब इसके बाद क्या लिखा है? हाँ, ये तीसरी और चौथी लाइन है, समझ में आ गया ना? हाँ हाँ जी, फिर अब ये पहला लाइन है, दूसरे श्लोक का 2800 का पहला लाइन है। हाँ हो गया। हाँ फिर जो का मतलब जो मुनि मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, लिखा है ना मुनिर मोक्ष प्रायण है, ठीक है। तो प्रभुपाद जी ने मुनि शब्द को योगी लिखा है, बस इतना ही है, बाकी सब ऐसे का ऐसा है कि नहीं है? वो यह सदा मुक्त एव सः। तो ये बात आपको अब समझ में आई कैसे करना है, ठीक है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, हृदय को पवित्र करना है निष्काम कर्म योग से। निष्काम कर्म योग में कर्म करके फल भगवान को अर्पण करने से हृदय पवित्र होता है। तो निष्काम कर्म योग में होता क्या है? कर्म करके फल भगवान को अर्पण करने से हृदय, पहली बात, और फिर उससे क्या प्राप्त होगा? हृदय शुद्ध होगा तो हमारे हम आगे बढ़ के क्या करेंगे? ज्ञान प्राप्त होगा। निष्काम कर्म योग से हृदय शुद्ध होगा और तब हम ज्ञान योग के द्वारा आत्मा की अनुभूति करेंगे। ये हो गया एक स्तर ऊपर, आगे आएगा, लेकिन आज ही ये एक लाइन याद कर लो। निष्काम कर्म योग में दो चीजें जब और जोड़ दोगे, निष्काम कर्म योग में दो चीजें जोड़नी है, वैराग और ज्ञान। क्या जोड़ना है? तो वो हो जाएगा ज्ञान योग। जब निष्काम कर्म योगी के साधन में ये दो चीजें और जुड़ जाएंगी, वैराग और ज्ञान, तो फिर उसको ज्ञान योगी कहेंगे। तो वो ज्ञान योगी का लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार करना। बोला आत्म साक्षात्कार क्या, उसके बाद क्या होगा? चक्रवर्ती पद का उसके बाद होगी भक्ति। बोला उससे क्या पता लगेगा? बोला भगवान का। ज्ञान से आत्मा का पता लगा और भक्ति से भगवान का पता लगेगा। तो ज्ञान से भगवान का पता क्यों नहीं लगता और भक्ति से भगवान का पता क्यों लगता है? ज्ञान सतोगुण की वृत्ति है और भगवान तीनों गुणों से परे है और भक्ति तीनों गुणों से परे है, इसलिए भक्ति से ही केवल भगवान का ज्ञान हो सकता है, ज्ञान योग से नहीं। ये बात समझ में आई सबको? आपके लिए देखो बहुत बाल्टी भर के माल आया है। क्या समझ में आया? ज्ञान योग से भगवान का ज्ञान क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो तीनों गुणों के अंतर्गत है, सतोगुण की वृत्ति है। ज्ञान योग कौन सी वृत्ति है? और भगवान को जानने के लिए क्या बनना है? कहीं दूसरे अध्याय में ऐसा श्लोक था क्या? भगवान ने कहा था क्या अर्जुन को? निस्त्र गुणो भव, अर्जुन कहा था ना, तीनों गुणों से ऊपर आओ, मेरे को समझना है। कहा था ना, तब अर्जुन ने ध्यान नहीं दिया। अर्जुन 14वें अध्याय में जाके पूछेगा तीन गुणों से ऊपर कैसे जाया जाए, अर्जुन पूछेगा 14वें अध्याय में। भगवान ने कहा था दूसरे अध्याय में, तब भगवान कहेंगे कि ऊपर जाने का रास्ता क्या है तीनों गुणों से, अविचारेण भक्ति योगेण अनन्य भक्ति। तो भक्ति से भगवान का ज्ञान होगा, ये बात तो समझ में आई। अब चक्रवर्ती पाद कहते हैं, ये है सारा इस अध्याय का सारांश। ये जो है ना, इस अध्याय में ये बातें बताई गई है। पांचवें अध्याय में क्या बताया, निष्काम कर्म योग भगवान को अर्पण करने से हृदय शुद्ध होगा, तब ज्ञान योग से आत्म का साक्षात्कार होगा, तब परमात्मा को जानने के लिए भक्ति करनी पड़ेगी क्योंकि वो गुणों से ऊपर है। ये इस अध्याय में सार है, ये अध्याय के अंदर है। अब प्रश्न उठाते हैं, ये जो 27 से लेकर 29 श्लोक तक हैं, तीन श्लोक कहते हैं, इसमें छठे अध्याय की भूमिका है। छठे अध्याय का नाम क्या है, उसकी भूमिका के ये श्लोक है, उसका सूत्र रूप है इस श्लोक में, ठीक है। क्योंकि ध्यान करने के लिए अब याद रखिए, क्योंकि ध्यान करने के लिए हृदय का शुद्ध होना चाहिए। वो कैसे होगा, निष्काम कर्म योग से, वो तो होना ही चाहिए। और ये बताया गया है ज्ञान योग से ध्यान योग श्रेष्ठ है साक्षात्कार के लिए, ज्ञान योग से ध्यान योग श्रेष्ठ है। ये भाव ये है, ज्ञान योग से ध्यान योग श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है, चलो ये तो श्रेष्ठ है कह लिया, क्यों श्रेष्ठ है। ज्ञान योग में आत्मा की अनुभूति होती है और ध्यान योग में परमात्मा की होती है, इसलिए श्रेष्ठ है। बहुत आसान है कि नहीं, क्योंकि ध्यान योगी तो परमात्मा का ध्यान करेगा ना, तो ज्ञानी तो आत्मा तक ही जाएगा, तो इससे श्रेष्ठ हुआ कि नहीं हुआ। क्यों श्रेष्ठ है तो समझ में आ गया। तो हृदय पवित्र कैसे होगा, निष्काम कर्म योग से, और तब ज्ञान प्राप्त होगा। जब ज्ञान आत्मा का होगा, अब दो शब्द और ये शब्द हैं ज्ञानियों के, परंतु आप जान लीजिए, एक को कहते हैं तुम पदार्थ और एक को कहते हैं तत्व पदार्थ। तत्व तुम दो शब्द समझ लो, हाँ, तुम पदार्थ है आत्मा। और एक श्लोक हमने पढ़ा था इसी अध्याय में, तद्बुद्ध्यस्तदात्मान तन्निष्ठा तत्प्रायण, उधर तत् का क्या अर्थ था, परमात्मा भगवान था ना। हाँ, तो ये समझ लो कि आत्मा के ज्ञान को कहते हैं त्वम पदार्थ, क्या कहते हैं त्वम पदार्थ, और परमात्मा के ज्ञान को कहते हैं तत्व तत्पदार्थ तत्पदार्थ। और एक वाक्य है ज्ञानियों का महावाक्य, क्या कहते हैं तत्त्वम असि, सुना है ना, तत्त्वम असि, तत्त्व भगवान, त्वम मैं, असि वो मैं एक हूं। तो ये सच भी है क्योंकि वो भी सच्चित आनंद है, हम भी सच्चित आनंद है। गुणात्मक में से सही है, मात्र आत्मिक में सही नहीं है, तो ये गलत नहीं है। तत्त्वम असि वो भी आध्यात्मिक, मैं भी आध्यात्मिक, एक ही है हम। ये तत्व बस सुना है ना, ये महावाक्य कहते हैं ज्ञानी, तत्व मसी। और दूसरा कौन सा महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये ज्ञान से कौन से पदार्थ का जानकारी होती है, त्वम पदार्थ की, और ध्यान से तत्व पदार्थ की। अच्छा जी, और जो इस श्लोक में स्पर्शान शब्द है, पहला स्पर्शान है ना, वो सारे इंद्रियों के लिए समझना चाहिए, केवल त्वचा के लिए नहीं समझना चाहिए, ठीक है। वो सारे इंद्रियों के लिए, आंख का, कान का, नाक का, जीभ का, सब का है। एक बात, तो ये इंद्रियों के विषय इंद्रियों के द्वारा मन में ना आए, इसको बाहर ही रखनी है। इसको कौन सा ध्यान योग में कौन सा अंग कहते हैं? प्रत्यय। बहुत अच्छा। फिर आंखों को रखना है, प्राणों को संयम करना है, बुद्धि मन और इंद्रियों को संयम में करना है। अब श्री प्रभुपाद जी का अनुवाद पर तात्पर्य पढ़ रहे, ठीक है। कृष्ण भावना के कार्यों में लगे रहने से तत्काल ही हम अपने स्वरूप को, आध्यात्मिक स्वरूप को समझ लेते हैं, और ये समझ लेते हैं भक्ति से भगवान को समझा जा सकता है। ये प्रभुपाद जी का पहला, ऐसे प्रभुपाद ने क्यों लिखा, देखो आगे वाला तात्पर्य हमने पढ़ा है ना, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का भी पढ़ा ना, उसको उसके उसके ऊपर दृष्टि रखते हुए ये प्रभुपाद ने क्यों लिखा है, बोल देखो समझ में आ रहा है, उसमें जो पढ़ा इसमें है कि नहीं है। उसमें क्या लिखा था, पहले आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, फिर परमात्मा का होना चाहिए, ये लिखा था ना। आत्मा का ज्ञान से होगा, परमात्मा का भक्ति से, ये हुआ ना। अब प्रभुपाद ने उसको सरल क्या कर दिया, कृष्ण भावना के कार्य, वहां था निष्काम कर्म, और यहाँ का कृष्ण भावना के कर्म करने से आत्मा का ज्ञान हो जाएगा और तत्काल भगवत तत्व का भी ज्ञान हो जाएगा। अब देखिए वो दोनों का ज्ञान भक्ति से हो जाएगा, प्रभुपाद लिखते कृष्ण भावना के, तो वो दोनों इसमें प्रभुपाद ने एक लाइन में लिखा है वो सारे को। ये बात समझ में आया। अब प्रभुपाद लिखते हैं, जब कोई व्यक्ति अच्छी तरह से भक्ति के स्तर के ऊपर स्थित है तो उसकी स्थिति दिव्य है, तब वो क्या करेगा, भगवान को सर्वत्र देखता रहे, कहीं भी सब जगह भगवान है उसको ये पता लगे, भगवान की सर्वव्यापकता, भगवान सर्वव्यापक है इसकी उसको अनुभूति होगी। कब होगी, जब वो भक्ति में दिव्य स्थिति को प्राप्त करेगा। ये कहना आसान है, भक्ति में दिव्य स्थिति को प्राप्त करके सब जगह कृष्ण दिखे, सभी भक्त दिखे, ये कौन सा, आपने उपदेशामृत में पढ़ा है कौन सा है, ये उत्तम अधिकारी का लक्षण है, ये किसका लक्षण है, ये उत्तम अधिकारी का लक्षण है सब जगह भगवान को देखना। हम देखते हैं क्या सब जगह भगवान को, नहीं देखते, ये उत्तम अधिकार प्रभुपाद जी का, वो आध्यात्मिक स्तर पर आएगा, भक्ति में अच्छी तरह से स्तर होगा तब वो भगवान का अस्तित्व सब जगह अनुभव करेगा। ये कौन से भक्त की स्थिति की बात कर रहे हैं, उत्तम अधिकारी के, सामान्य की नहीं है, सब में सब जगह भगवान देखना। हर संभव, प्रभुपाद जी को कहा जब पाकिस्तान और भारत की लड़ाई 71 में हो रही थी, बोला पाकिस्तान बम फेंकेगा, प्रभुपाद ने कहा ये बम को हम देखेंगे कृष्ण आ रहा है बम के रूप में, बम के रूप में कृष्ण आ रहा है, ये प्रभुपाद जी का उत्तर था। तो ऐसे इस स्तर का महात्मा सब 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 कृष्ण से संबंधित दिखे, कृष्ण से अलग कुछ भी नहीं दिखेगा। तो ये कौन सा स्तर, हमारा स्तर नहीं है, कहीं आप नहीं समझना कि ये हमारे लिए, ये बहुत ऊपर भागवत, उत्तम भागवत का लक्षण है ये। ये क्यों ऐसे मैं कह रहा हूं, इसलिए कि ये ध्यान योग से ऊपर है, तो ध्यान योग से ऊपर है तो भागवत का लक्षण है, सामान्य लक्षण नहीं दृढ़ विश्वास होना चाहिए भगवान के ऊपर, भगवान सब जगह है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऐसी स्थिति को कैसी, सब जगह भगवान दिखाई दे, ऐसी स्थिति को क्या लिखा है, एक शब्द और लिखा है, किसमें मुक्ति, लिबरेशन इन द सुप्रीम, जो मुक्ति किस में, हाँ किस में मुक्ति है, कहा जाए कि दिव्य इसकी भगवान में मुक्ति, या मुक्ति की एक परिभाषा है। अच्छा, एक मुक्ति की आपको परिभाषा पढ़ाई थी पहले, याद है मुक्ति की परिभाषा क्या है, हित्वा अन्यथा स्वरूपम स्वरूप व्यवस्थितम, सबको मालूम है ये मुक्ति का परिभाषा, हाँ क्या करना है, अन्यथा स्वरूप को त्यागना है। इसके लिए एक और शब्द है, आपने कभी पढ़ा हो तो, भक्ति रसामृत सिंधु के भक्ति की एक तो मुख्य रूप गोस्वामी की परिभाषा है, कौन सी, एक और परिभाषा नारद पंचरत्नासे दी है, कौन सी है, सर्व उपाधि विनुर्मुक्तम, ये अर्थ है किसका, अन्य स्वरूप, अन्यथा रूप को त्यागने का अर्थ है सर्व उपाधि विनुर्मुक्तम, सर्व उपाधि विनुर्मुक्तम मतलब अपनी दूसरी पहचान को छोड़ना है, तो स्थित किस में होना है, स्वरूप स्थितम, जीव के अपने स्वरूप में स्थित होना है, तो अपने जीव के स्वरूप में स्थित होना है उसको मुक्ति कहते हैं। तो ये मुक्त हो गया, तो अपने स्वरूप में स्थित, हमारा स्वरूप क्या है, तो अब हम स्वरूप में स्थित हो गए तो हमारे क्या कहेंगे, मेरी मुक्ति हो गई कृष्ण की सेवा में, क्या हुआ, यही तो है ना भाई, यही स्वरूप तो ये है ना, तो इसलिए प्रभुपाद ने शब्द क्या लिखा है, अब देखो अच्छी तरह से अंग्रेजी में क्या लिखा है, लिबरेटेड इन द सुप्रीम, इसका मतलब स्वरूपगत कृष्ण की सेवा में स्थित हो गया, उसको मुक्त समझना चाहिए, जीवन मुक्त है, क्योंकि वो शब्द जो लिखा है एक आपके हिंदी में नहीं लिखा है ना, हाँ सुप्रीम लिखा ही नहीं है, विशेष तो भगवान विशेष है, निर्विशेष नहीं है, विशेष है ये तो ठीक है, लेकिन ये सुप्रीम जो शब्द है, सुप्रीम का मतलब है भगवान, परम, परम में मुक्ति, तो परम में मुक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा में लग जाना। अब प्रभुपाद ने परम के जो अभी तक बताया, परम में मुक्ति वो कौन से साधन से बताया, अभी तक जो हम पढ़ के आए कौन सा साधन था, नहीं क्या था, लेकिन प्रभुपाद ने क्या लिखा, कृष्ण भावना में काम करने वाला अपने आप को जान लेगा, भगवान को जान लेगा, यही लिखा है ना, तो भक्ति योग की बात हुई अभी तक, भक्ति योग से मुक्ति की बात की प्रभुपाद ने, अब प्रभुपाद लिख रहे यही बात, मुक्ति जो भगवान में होनी है, अर्जुन को अब भगवान बताने जा रहे हैं कि अष्टंग योग के द्वारा यह मुक्ति हो सकती है। अब देख, अब वो भक्ति वाली बात प्रभुपाद ने अलग की, अब अष्टंग योग की बात कर रहे हैं, यहां यहां लिखा है सुप्रीम, नहीं देखो दोबारा लिखो, यहां भी वही शब्द है, जरा पढ़िए, ये पढ़िए, इस प्रकार अर्जुन को सिद्धांत या कहा जाए सिद्धांत, मुक्ति का सिद्धांत बताने के बाद क्या लिखा है,
मुक्ति विषय में उपयुक्त सिद्धांतों का प्रतिपादन करके श्री भगवान अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं।
नहीं, अब यहां तक ठीक है, पहली लाइन पढ़िए उसमें सुप्रीम है कि नहीं, दोबारा पढ़िए,
मुक्ति विषय में उपयुक्त सिद्धांतों का
हाँ क्या मुक्ति विषयक, ठीक है, मुक्ति विषयक मतलब मुक्ति के विषय में। हाँ फिर उपरित सिद्धांत, ये सब ठीक है, लेकिन वो शब्द है ही नहीं, जो सुप्रीम उधर था सुप्रीम इधर भी नहीं है। हाँ ऊपरी सिद्धांत, ऊपरी लिखा है, ऊपरी सुप्रीम का अर्थ नहीं है, सुप्रीम भगवान के लिए शब्द है, नहीं सुप्रीम शब्द भगवान के लिए है, और सुप्रीम शब्द लाइन में बड़े एस से है, छोटे एस से कि बड़े से, बड़े से है, बड़ा एस लिखा है सुप्रीम का, इसका मतलब भगवान के लिए है, कोई साधन के लिए नहीं है, साधन होता तो छोटा होना चाहिए था। ये शब्द नहीं है आपके हिंदी में। भगवत स्वरूप में मुक्ति सेवा के भाव से, आपको अपनी भाषा में समझना है, जीव के सेवा के भाव से भगवान के स्वरूप में मुक्ति, जीव के सेवा के भाव में, वो समझा दिया कि ऐसे होती है भक्ति से। अब अष्टांग योग के विषय में से भी मुक्ति हो सकती है अभ्यास करेंगे तो। ये लिखा है, अब आठ अंग लिखे आज याद कर लो, अष्टांग योग का, अष्ट का मतलब आठ, आठ अंग योग के कौन से हैं, नंबर एक यम, दूसरा नेम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। यम का क्या अर्थ है आज याद करो पक्का, यम का मतलब यमलोक जाने वाला काम, यम का, यम को यमलोक कहोगे समझोगे तब समझ में, यम का मतलब जो नहीं करना चाहिए, ये पाप नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, यम का मतलब, यम वैसे पांच हैं, योग में पांच यम हैं, उसको कहते नहीं करना चाहिए, हम कहते निषेध, वैसे निषेध लिखोगे याद नहीं होगा, यम का यम समझो, यमराज, जो ये करेगा वो यमराज के पास जाएगा, और नेम का मतलब करना, जो करना चाहिए। अब जितने योग बाहर प्रचार हो रहा है उसमें यम और नेम का नाम निशान नहीं है, जितना योग लोग दुनिया में कर रहे हैं उसमें यम और नेम है ही नहीं, और यम और नेम योग की नीम है, फाउंडेशन है, इसके ऊपर योग बना हुआ है, और यम और नेम है ही नहीं। तो यम और नेम ये तो हैं हमारे को, क्या नहीं करना क्या करना है, ब्रह्मचर्या, ब्रह्मचर्य जो है ये नेम है, ब्रह्मचर्य का पालन करना ये नेम है, यम ये नेम में है। उसके बाद है आसन, कम से कम 2.5 से 3 घंटे एक आसन में बैठने की आदत डालना, क्योंकि ध्यान करना है तो इतना तो बैठना ही पड़ेगा ना, कम से कम 2-2.5 घंटे उसको कहते हैं आसन पक्का हो गया। और फिर है प्राणायाम, और फिर है प्रत्याहार, ये पांच प्रायः ये बाहर अंग हैं, ये बाहर के हैं, ध्यान धारणा और समाधि ये अंतरंग हैं, क्योंकि कल 6 अध्याय में 2 शब्द आएंगे, कौन से 2 शब्द आएंगे, योग आरुरुक्ष योग आरूढ़, योग आरुरुक्ष और योग आरूढ़, आरुरुक्ष का मतलब योग में आगे चढ़ने वाला, और योग आरूढ़ का मतलब जो ऊपर पहुंच गया। तो पहले 5 जो हैं, कम से कम 5, ज्यादातर 5 ही मानते हैं, वो आरुरुक्ष में आते हैं, कभी कभी 6 भी बोलते हैं। तो पहले 5 अंग आरुरुक्ष है, अभ्यास है, और 3 अंग जो पीछे के हैं वो आरूढ़ स्थिति में होते हैं, परंतु कभी 6 भी बोलते हैं, पहले 6 भी बोलते हैं, 5 बाहर अंग बोलते हैं, 3 अंतरंग बोलते हैं, और 6 बाहर अंग और 2 अंतरंग भी कोई कोई कहते हैं। तो इस प्रभुपाद ने 8 अंगों का नाम लिखा है, देखा, और फिर कहा कि 6 अध्याय में इसका विस्तार किया जाएगा। यहां तक प्रभुपाद ने दिखा है सामान्य तात्पर्य समझाने के लिए। अब श्लोक के ऊपर आ रहे हैं प्रभुपाद जी। अब प्रभुपाद जी श्लोक की परिभाषा कर रहे हैं, देखिए क्या लिख रहा है। पहले अपने शब्द सप्रसादि को प्रत्याहार करना पड़ेगा, ये पहली लाइन की परिभाषा है ना। ये पहली लाइन श्लोक की परिभाषा प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं आगे, ठीक है। और फिर लिख रहे हैं दूसरी लाइन की परिभाषा, दृष्टि को दोनों भ्रुवों के बीच में आधा खुला आधा बंद रखो, और फिर उसके दो कारण बता रहे हैं। इसका लाभ क्या है? पहला, पूरी बंद नहीं करो नहीं तो नींद आ जाएगी, और पूरी खुली रखोगे तो बाहर विषयों में भागेंगे, ठीक है। तो ये प्रभुपाद जी ने पहली दो लाइनों का परि यहां दिया है आपको भाषा। और फिर आ रहे हैं तीसरी लाइन पे प्रभुपाद जी, श्लोक की तीसरी लाइन पे, अपने प्राणों को नासिका के अंदर ऊपर और नीचे जाने वाले प्राण और अपान को समान करना है, और ऐसे कोई करेगा तो प्रभुपाद जी कहते ऐसा अभ्यास करेगा योगी तो क्या उसको मिलेगा, उसकी इंद्रियां वो क्या कर पाएगा, इंद्रियों को बाहर जाने से रोकेगा तो फिर परम में मुक्त होने का के लिए तैयार हो जाएगा। लिखा क्या लिखा है? परम में मुक्ति के लिए तैयारी, क्या लिखा है? परम लिखा है, फिर भी लिखा है लिबरेशन एंड सुप्रीम, या अंग्रेजी में तो बिना सुप्रीम के लिबरेशन कहां करेगा, ये गए ग्वालियर जाएगा क्या? तो इनकी मुक्ति कहां होगी फिर? अब प्रभुपाद कहते हैं इस योग अभ्यास में क्या होगा, ये योग अभ्यास हमारी सहायता करते हैं सब प्रकार के भय से, क्रोध से, भय क्रोध से और भय और क्रोध से मुक्त करेगा, और फिर क्या होगा, परमात्मा की दिव्य स्थिति का अनुभव करेगा, भय और मुक्त जाएगा, भय और क्रोध जाएगा। अब प्रभुपाद जी सारे के ऊपर पानी फेर रहे हैं, किसके सारे के ऊपर, अष्टांग योग के ऊपर पानी फेर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं एक लाइन में देखो, दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना अमृत आसान तरीका है ये सब योग के साधनों का। हाँ, सब कुछ कहने के बाद कृष्ण भावना अमृत सरल साधन है इन सारे योग के अभ्यास का, ठीक है। तो हमने आज आठ अंग योग के आगे प्रभुपाद जी लिख रहे, थोड़ा ये आगे छठे अध्याय में सिखाया जाएगा। जो कृष्ण भावना में भक्त है, क्या हो गया, ऊपर से कुछ गिर रहा है क्या? अब देखिए क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव भक्ति में लगने के कारण उसको इंद्रियों के अन्यथ प्रवृत्ति की भय नहीं रहता है, कोई चिंता नहीं रहती है, उसका कोई खतरा नहीं। ये अच्छा तरीका है इंद्रियों को, ये अच्छा अष्टंग से अच्छा मार्ग है इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाने का। प्रभुपाद जी यहीं से इस रास्ते पे हमको ले आ रहे हैं। अब हम मुख्य श्लोक पढ़ने जा रहे हैं इस अध्याय के पूर्णाहुति का। तो हमने 27 और 28 श्लोक में क्या पढ़ा, कोई सारांश बताएगा इसका, क्या पढ़ा हमने? अष्टांग योग के द्वारा मुक्ति में मुक्ति प्राप्त हो सकती है, ठीक है। और वही कार्य कृष्ण भावना से और सरलता से हो सकता है। दो बातें। तीसरी बात, कृष्ण भावना का कार्य में कोई खतरा नहीं है इंद्रियों को भटकने का, अष्टंग में भय रहता है। ये तीन मुख्य मोटी मोटी बातें ही, बाकी तो साधन था सारा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 29वां श्लोक आज के 5वें अध्याय की पूर्णावती का। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सौहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। भोक्तारम, भोक्तारम का अर्थ क्या है? भोगने वाला। प्रभुपाद ने शब्द अर्थ में क्या लिखा है भोक्तारम को? बस सिर्फ एक शब्द है, भोगने वाला। ठीक है, भोक्ता, भोगने वाला, ठीक है। अब दूसरा शब्द है यज्ञ। यज्ञ कौन करते हैं प्रायः, मैं आपसे पूछता हूं, यज्ञ कौन करते हैं प्रायः? कर्म, सकाम कर्म वाले, ठीक है। और तपस्या कौन करते हैं? ज्ञानी, योगी। तो हमारे आचार्यों ने भाव ये लिखा है कि कर्मियों के यज्ञ के भोक्ता भी भगवान है, ज्ञानियों की तपस्या का भोक्ता भी भगवान है। तो कर्मियों का भी भोक्ता भगवान, यज्ञेश्वर के रूप में भोक्ता है। कर्मियों का भोग कैसे करता है? यज्ञेश्वर के रूप में। किस रूप में? और वरदान भी देता है यज्ञेश्वर के रूप से। ये आप कहाँ शब्द पढ़ के आए हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पढ़ के आए हैं भगवद गीता में आप? कहाँ पढ़ के? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। चौथे अध्याय में मैंने पढ़ाया है, आपके साथ चर्चा की है इसके ऊपर। कौन से श्लोक में? अब ध्यान दो, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, इस श्लोक के परिभाषा में था, याद है? योगियों को योगेश्वर के रूप में, कर्मियों को यज्ञेश्वर के रूप में, ये बातें की थी, ध्यान में है? चौथे अध्याय में ये कथा करी थी ना? हाँ, क्या है तेरा? क्या? हाँ तेरा होगा ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, वो जो चौथे में, उसके अंदर ये शब्द शब्द थे सारे। योगता भोक्तारम यज्ञ तपसम, दोनों का अर्थ आ गया। अब तीसरा है सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोकों का मैं महान ईश्वर हूं, ये है योगियों के लिए परमात्मा। ये योगियों का भोक्ता है, योगी जो ध्यान करते हैं सर्वलोक महेश्वरम, वो है परमात्मा। अभी तक ये सब परमात्मा की बात है। और अब चौथा लिखा है सौहृद सर्वभूतानां, ये है भक्तों का, भक्तों के भगवान है सौहृद, सबके हैं परंतु भक्तों के है। ऐसा दोनों आचार्यों ने इनके शब्दों का भाव ऐसे लिखा है। भगवान कर्मियों के यज्ञ के भोक्ता यज्ञेश्वर के रूप में, ज्ञानियों के तप के भोक्ता, और योगियों के सर्व लोक महेश्वर के रूप में परमात्मा, और भक्तों के सौहृद के रूप में। जो ये जानता है, ज्ञात्वा माम, जब माम भगवान ने कहा तो छाती पे उंगली रखी, माम माने वो कौन है? भोक्ता कृष्ण है। जो मुझे ऐसे जानता है, जो मुझे ऐसे जानता है, शांति मृच्छति, उसको मुक्ति मिलेगी। शांति का यहां अर्थ है मुक्ति, क्योंकि प्रसंग मुक्ति का चल रहा है ना, संसार के दुखों से मुक्त हो जाएगा, शांति मिलेगी। अब ये है आचार्यों के भाव। अब आप श्री प्रभुपाद जी के अनुवाद को पढ़िए।
समस्त जीवों का सुखकारी योग जैसी जान पर
तो अनुवाद समझ में आ गया। अब हम चक्रवर्ती पाद का पहले भाव पढ़ते हैं और बता दिया आपको ये। ये श्लोक क्या कह रहा है? चक्रवर्ती पाद कहते हैं ये श्लोक कह रहा है योगी, कौन? ज्ञान योगी। वो इस प्रकार से, किस प्रकार के का अर्थ, प्रत्याहार करके, प्राणायाम करके, मन इंद्रियों और बुद्धि को वश में करके, भय और क्रोध से मुक्त होकर, ये इसका अर्थ है। इस प्रकार से परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करने से मुक्ति प्राप्त करेंगे, जैसे ज्ञानी को मुक्ति मिलती है। तो ये श्लोक क्या कह रहा है कि ध्यान योगी भी परमात्मा की अनुभूति करके मुक्ति प्राप्त करेंगे, जैसे ज्ञानी करते हैं। अब ये पहली लाइन लिखिए, ये श्लोक इसलिए बोला है भगवान, ये श्लोक क्यों बोला है, कह रहा है इसलिए बोला है। अब कह रहे हैं मैं भोक्ता हूं, वो लिखा है भोक्ता के लिए है, अंग्रेजी में लिखा है जैसे माता पिता होते हैं ना बच्चे के लिए, अभिभावक होते हैं, गार्डियन। गार्डियन का मतलब है संरक्षक। भगवान मैं संरक्षक हूं यज्ञ का, जो कर्म योगी करते हैं, मैं संरक्षक हूं, भोक्ता हूं तपस्याओं का, जो ज्ञानी करते हैं। इसका अर्थ है ज्ञान योग और कर्म योग का भी विषय तो मैं ही हूं ना, कि दोनों मेरे को ही ढूंढ रहे हैं। और वो दूसरे व्यक्ति जो सर्वलोक महेश्वर, मैं सब लोगों का स्वामी हूं ये जानते हैं, वो कौन है? वो परमात्मा है। और ये अष्टांग योगियों का लक्ष्य है। तो कर्मियों का लक्ष्य हो गया, ज्ञानियों का हो गया, अष्टांगियों को, तीनों का लक्ष्य यही है, मैं हूं। और फिर कहते हैं मैं सबका हितेशी हूं। मैं कैसे सबका हितेशी हूं? ये चक्रवर्ती पाद लिखते हैं मैं सबका हितेशी कैसे हूं? कहते सबको भक्ति का उपदेश देता हूं इसलिए मैं हितेशी हूं। मैं सबको भक्ति का उपदेश देने के कारण सबका सुहृद हूं, हितेशी हूं। बोला कैसे देती हो भक्ति का उपदेश? कहते मेरे प्यारे भक्तों के द्वारा, मैं मेरे भक्तों के द्वारा मेरी कृपा से। ये जब भगवान कह रहे हैं तब क्या समझना चाहिए? तब एक श्लोक चेतना चरितमृत का समझना चाहिए। कौन सा? ब्रह्मांड भ्रमित कोई भाग्यवान जीव कृष्णा गुरु कृष्ण प्रसादे। प्रसाद का अर्थ क्या है? कृपा। यहां लिखा है मेरी कृपा से भक्त भक्ति का उपदेश करते हैं। ये मेरे सुहृद का मतलब है। मैं सुहृद कैसे हूं? मेरे भक्तों के माध्यम से, मेरी कृपा से भक्ति का उपदेश सबको देता हूं। और मैं भक्तों का भी भक्ति का विषय हूं। अब वही बात कह रहे हैं जो हम पहले आपके साथ कर चुके हैं। केवल सतोगुण की वृत्ति ज्ञान से कोई मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है, पहली बात। और फिर कहे केवल आप भक्ति से ही आपको प्राप्त किया जाए, मुझको प्राप्त किया जाएगा। भगवान कहते हैं मुझे प्राप्त करने का एक ही रास्ता है, क्या? भक्ति। केवल भक्ति से मुझे प्राप्त किया जा सकता है। और भक्ति को, भक्ति कैसी है? तीनों गुणों से परे है। और वो ही मुझे जान सकेगा और तभी वो शांति को या मुक्ति को प्राप्त करेगा। तो भगवान को जान कौन सकता है? अब एक शब्द मेरे उत्तर दीजिए, जो तीनों गुणों से ऊपर उठेगा। और जो तीनों गुणों से ऊपर उठेगा वो केवल भक्ति से हो सकता है। तो भगवान को केवल भक्ति से जाना जा सकता है। इस अध्याय में निष्काम कर्म योगी और ज्ञानी आत्मा और परमात्मा की अनुभूति करके मुक्ति पा सकते हैं, ये इस अध्याय का विषय था। अब हम अपना पुस्तक खोलिए, श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी ने इस श्लोक को पूरे विश्व के अंदर एक नाम से प्रसिद्ध किया है, शांति का सूत्र, विश्व शांति का सूत्र। इस श्लोक का प्रभुपाद जी का नाम क्या है? विश्व शांति सूत्र, विश्व शांति सूत्र। इसलिए प्रभुपाद अपना तात्पर्य कैसे शुरू कर रहे हैं? इस भौतिक जगत के अंदर बद्ध जीव माया से मोहित परेशान सदा ही शांति की खोज में है, और उस शांति का वर्णन भगवद गीता के इस विभाग में है। ये प्रभुपाद जी का पहले लाइन लिखी है, ऐसे लिखा है ना। इसका अर्थ क्या है कि शांति का सूत्र जो सारा संसार ढूंढ रहा है वो इस श्लोक में, इस अध्याय में है। और सबसे बड़ा शांति का सूत्र सरल भाषा में क्या है? भगवान श्री कृष्ण मानव मात्र के सौहृद है। क्या है, क्या लिखा है आपके पास? बेनिफिशरी, बेनिफिशरी आप तो भोक्ता। श्री कृष्ण ही सब मानव के सब कर्मों के भोक्ता है। अब एक देखो, अशांति क्यों होती है? अब आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, इसको राजा रख दीजिए। आपस में यहां आपस में अशांति कब होगी? मैं खाऊं, ये जो आया है पहले मेरे को तो जूस, मेरे को जूस दो, इसको ज्यादा क्यों दिया? तो ये जो मेरे को, तो इसका मतलब हम क्या चाह रहे हैं? भोक्ता। तो दुनिया में झगड़े का कारण है भोक्ता बनना। मैं भोक्ता, तू भोक्ता, यही तो झगड़े का कारण है ना। तो पहले समझ लो कि भोक्ता कृष्ण है, हम है ही नहीं, तो झगड़ा खत्म हो गया, तो फिर तो शांति हो गई ना कि नहीं होगी। तो एक तो पहली ये सिद्धांत समझना है कि शांति का यहां अर्थ क्या है। शांति का अर्थ ये है कि हम सब भोक्ता बनने की मूर्खता के कारण संसार में लड़ रहे हैं। भोक्ता बनने की मूर्खता के कारण संसार में लड़ रहे हैं। जब ये समझ में आएगा कि हम भोक्ता है ही नहीं, भोक्ता श्री कृष्ण है, तो शांति अपने आप हो जाएगी। ये बात एक समझ में आई। अब दूसरी बात, पहले एक बार प्रभुपाद ने एक लाइन लिखी, आगे क्या लिखा है? इसलिए क्योंकि भगवान भोक्ता है, सभी भगवान की दिव्य सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि वो सारे लोगों का और देवताओं का। अब दूसरा प्रश्न, इस दुनिया में दूसरा अशांति और झगड़े का कारण क्या है? ये कमरा मेरा, ये जगह मेरी, ये जमीन मेरी, ये जायदाद मेरी, ये देश मेरा, और भगवान कहता किसी का नहीं, सब मेरा है भाई, सारे लोगों का मैं स्वामी हूं, यही कह रहा है ना। तो ये अगर आप कहोगे सब कृष्ण का है तो शांति हो जाएगी, कोई झगड़ा नहीं होगा। तो दोनों बातों को समझ में, शांति कैसे होगी, समझ में आई? हम किसी के स्वामी हैं ही नहीं, सारे दुनिया के लोग जिस जगह को अपनी मान रहे, जिस देश को अपने मान रहे, इससे पहले कौन था? कोई और था, अब कोई और है, फिर कोई और आ, एक महात्मा था बहुत अवधूत, एक राजा के महल में जाके सो गया। कहां सो गया? चौकीदार ने कहा उठो, ये राजा का महल है, तुम यहां कहां पड़े हो? महात्मा बोला राजा क्या होता है? बोला यहां का मालिक होता है। बोला राजा से बात कराओ, राजा के पास ले गए। बोला महाराज आप राजा हैं? बोला हाँ। बोला आपसे पहले कौन था? बोला मेरा पिता। आप नहीं रहेंगे कौन होगा? मेरा बेटा। अच्छा, तो जो पहले किसी और का है, अब आपका है, बाद में किसी और का है, तो मैं यहां सोया हुआ था, मुझे क्यों जगाया? मैं समझा धर्मशाला है। इसने कहा राजा का महल है। तो जब तुम इसके मालिक थे नहीं और तुम जाने के बाद तुम रहोगे नहीं, तो यही तो धर्मशाला है, और कौन सी धर्मशाला होती है भाई? धर्मशाला समझ के क्यों सोए हो? बोला धर्मशाला है ना, तुम पहले मालिक नहीं थे, तो ही और था, अब तुम हो, बाद में कोई और होगा, तो इसी को तो धर्मशाला बोलते। एक दूसरा ऐसा मस्त अवधूत बैठा था, रास्ते में राजा की सवारी आ रही थी। बोला हटो हटो हटो, राजा आ रहा है। बोला राजा क्या करता है? बोला सबके ऊपर उसका आदेश चलता है। अच्छा, मैं पूछूंगा एक प्रश्न राजा से। राजा आ गया, महाराज आप राजा हैं? बोला हाँ। आपको सबके ऊपर आदेश चलता है? बोला हाँ। बोला रात को मच्छर बहुत परेशान करता है, महाराज इसको बोलो नहीं आए। बोला मच्छर के ऊपर मेरा आदेश नहीं चलता। बोला किस चीज के राजा हो, मानता तेरी मच्छर भी नहीं है। तो ये दुनिया में सारे के सारे चीजों के स्वामी है लेकिन मानता मच्छर भी नहीं है। नहीं, सच है कि झूठ है? तो ये दो कारण भगवान भोगता है, कैसे समझेंगे? बहुत से लोगों को आप कहो कथा में आएंगे, बोल रहे हमारी मर्जी जो करेंगे, ऐसे कहते हैं ना, हमारी जो जैसे हमारी मर्जी ऐसे करेंगे। तो उस बोल तेरी मर्जी चलती है उससे पूछो, तेरी मर्जी चलती है तो तेरे बाल सफेद ना हो इसको रोक के दिखाओ। तेरी मर्जी वहां तो चलती नहीं है, बाल सफेद हो जाते। तेरी मर्जी किसके ऊपर चलती है बताओ? सिर्फ कथा में नहीं आने के ऊपर चलती है, बाकी सबके ऊपर चलती है? सारे मूर्ख है। तो दो कारण शांति के क्या समझे हमने आज? भोक्तापन सब समझते, मैं भोगता हूं भगवान भोगता है, ये समझ लेंगे तो शांति हो जाएगी। और सब स्वामी समझ रहे हैं और भगवान को सबका स्वामी समझेंगे तो शांति हो जाएगी। ये दो बातें हो गई, ठीक है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान से कोई बड़ा है नहीं, भगवान के समान कोई है नहीं, बड़े बड़े देवता भी भगवान के अधीन हैं। इसके लिए एक श्लोक दिया हुआ है श्वेताश्वत्र उपनिषद से, तम ईश्वरम परमम महेश्वरम, चार लाइन का श्लोक है। पूरा है? हाँ नहीं, इतना लिखा है लेकिन तीन लाइन है और भी है। ये श्लोक है दिया है इसको, ये काहे के लिए श्लोक दिया है? भगवान को सर्वोपरि सबके स्वामी बताने के लिए, महेश्वर बताने के लिए, सर्वलोक महेश्वर, सर्वलोक महेश्वर बताने के लिए। अब प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं एक लाइन में, माया के जाल में फंसे हुए लोग अपने आप को जो दिखते हैं उसका स्वामी समझने का प्रयास करते हैं, परंतु मूर्ख जानते नहीं हैं कि वो माया के अधीन हैं। हम माया के स्वामी समझने का प्रयास करते हैं लेकिन हैं माया के अधीन। एक कहावत है, रुपये के तुम स्वामी बनोगे, हाँ क्या कहते हैं, पैसा तुम्हारा स्वामी बनेगा तो तेरा सत्यानाश करेगा। पैसे के तुम स्वामी बनोगे तो सेवा में लगा सकते हो, ये कहावत है। धन के स्वामी बनोगे तो सेवा में लगे, धन तुम्हारा स्वामी ना बन जाए। दूसरी भाषा बोलते हैं, कुर्सी है, ये कुर्सी है ना, इसके ऊपर आप बैठो कोई परेशानी नहीं, ये आपके ऊपर ना बैठनी चाहिए। कुर्सी आपके ऊपर बैठने का मतलब कुर्सी का नशा, मैं यहाँ का जो चाहूँ वैसे कर सकता हूँ, ये आपके पतन का कारण है। तो माया क्या करती है, लाइन प्रभुपाद ने कहा, माया के सब माया के जाल में फंसे हुए अपने आप को जो देखते हैं उसका स्वामी मानने की मूर्खता करते हैं। ये लिखा है ऐसे लिखा है, देखो ऐसे लिखा है और कुछ लिखा है? किसके ऊपर? जो देखते हैं उसके ऊपर। हाँ ठीक है, सर्वत्र भगवान की माया, माया के भगवान की माया स्वामी है, हम स्वामी समझने की मूर्खता करते हैं। अब प्रभुपाद लिखते हैं भौतिक जगत के स्वामी भगवान है, हाँ, और बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के कठोर अनुशासन में है, नियमों के बंदर बंधे हुए हैं। जब तक ये सत्य नहीं समझ में आएगा तब तक शांति नहीं मिलेगी, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से। तो व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक क्या कहेंगे, जब तक हम क्या नहीं करेंगे के माया का स्वामी भगवान है, हम नहीं हैं। माया के मोह से हम सबका स्वामी बनने की मूर्खता छोड़ देंगे तभी शांति मिलेगी। और ये कृष्ण भावना का, यही कृष्ण भावना का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर है और सारे जीव यहां तक के बड़े बड़े देवता भी उनके आश्रित है, अधीन है। तब उसको पूर्ण शांति प्राप्त होगा और केवल कृष्ण भावना में, केवल कृष्ण भावना में पूर्ण शांति प्राप्त होगा। अब कृष्ण भावना में पूर्ण शांति होती तो कृष्ण भावना क्या है प्रभुपाद समझाएंगे। अब एक लाइन लिख लो कि क्या है, कृष्ण भावना में पूर्ण शांति प्राप्त होगी, शांति की सिद्धि कृष्ण भावना में होती है, ऐसा लाइन ऐसे लिखी हुई है। परफेक्शन ऑफ पीस लिखा है, परफेक्ट पीस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो पूर्ण सिद्धि शांति की कृष्ण, तो कृष्ण भावना क्या है, अब प्रभुपाद लिखते हैं कृष्ण भावना का अर्थ है पूर्ण ज्ञान से कृष्ण के साथ संबंध हमारा है, उसी के अनुरूप कार्य करना। कृष्ण परम पुरुष भगवान है, हम उसके सेवक हैं और सारा कार्य इस भावना में करना, ये कृष्ण भावना है। शुद्ध जीव कृष्ण का नित्य सेवक है, वो एक छोटा सा भगवान का अंश है, विभिन्न अंश है, वो माया के संपर्क में आया है। क्यों आया है, इच्छा करने के कारण। कौन सी इच्छा, माया ने इसको मूर्ख बना दिया, स्वामी बनने की मूर्खता कर बैठा और यही इसके सारे दुखों का कारण है। जब तक ये भौतिक संपर्क में रहेगा तब तक उसको भौतिक आवश्यकताओं के लिए काम करना पड़ेगा शरीर के लिए। अब बहुत महत्वपूर्ण लाइन आ रही है, कृष्ण भावना भौतिक जगत में रहते हुए, कृष्ण भावना का इतना बड़ा प्रबल प्रभाव है कि भौतिक जगत में रहते हुए आध्यात्मिक जीवन की अनुभूति कर सकते हैं। अभ्यास करेंगे तो आध्यात्मिक जीवन हो जाएगा, भौतिक जगत में आध्यात्मिक जीवन में रहेंगे। ये लास्ट लाइन है, जरा पढ़ो देखो क्या समझ में आया ये लाइन। अब भगवान वही ये यथा माम प्रपद्यन्ते श्लोक के भाव से लिखा है, क्या लिखा है, जितना हम आगे प्रगति करेंगे भगवान की सेवा में उतना ही भौतिक माया के बंधन से मुक्त होंगे। जितना भक्ति का कार्य जितनी मात्रा में करेंगे, जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही माया से मुक्त होंगे। भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, हरेक को कृष्ण भावना में कार्य करना चाहिए और ऐसे करने से हमारी, अब प्रभुपाद जी श्लोक के शब्दों पे फिर आ रहे हैं, कौन से अंतिम श्लोक के शब्दों पे आ रहे हैं, विगच्छ इच्छा भय क्रोध पे आ रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, हर एक चीज हमारे कृष्ण भावना के कार्यों के ऊपर निर्धारित है। हर प्रकार से हमारी सहायता होगी हमारी इंद्रियों को वश में करने के लिए, इच्छा और क्रोध को। तो ये तीनों श्लोक के शब्द हैं। तो ये कैसे हमारे वश में होंगे? जब हम कृष्ण भावना के निर्धारित कार्य ठीक तरह से करेंगे और कृष्ण भावना में अटलता से टिके रहेंगे, तो ऊपर वाला जो रजोगुण का प्रभाव है, प्रभुपाद ने रजोगुण किसके लिए शब्द लिखा है? रजोगुण लिखा है क्या? वही काम क्रोध दोनों है, वो रजोगुण है। पेशन, पेशन का मतलब रजोगुण। वो तो फिर ब्रह्म निर्वाण के स्थिति को प्राप्त करेगा। वास्तविक दिव्य स्थिति जिसको ब्रह्म निर्माण कहते हैं, उसको प्राप्त करेगा। अब प्रभुपाद जी कहते हैं ये अष्टांग जो योग है, इसका अभ्यास अपने आप कृष्ण भावना में हो जाता है, क्योंकि दोनों का लक्ष्य एक है। दोनों का लक्ष्य क्या है? ब्रह्म निर्वाण। तो दोनों का लक्ष्य एक है। ऐसे पहले कोई एक चीज कही है जिसका लक्ष्य एक था? निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग एक ही है, क्योंकि उनका लक्ष्य एक है। तो यहां कह रहे हैं सांख्य योग, ध्यान योग और कृष्ण भावना एक ही है, क्योंकि ध्यान योग वाला क्या करेगा? परमात्मा का ध्यान करेगा। और हम क्या कर रहे हैं? परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। तो दोनों का लक्ष्य एक हो गया ना, दोनों परमात्मा को ही ढूंढ रहे हैं ना। तो ये यहां ये बात दोबारा कही गई है, ठीक है। परंतु ध्यान योग में धीरे धीरे यम नियम प्रत्याहार प्रासन धारा ऐसे करते करते ऊपर जाना पड़ेगा। परंतु ये तो भक्ति की का आमुख है, यानी भक्ति का ये शुरुआत है, समझ लीजिए ये आरंभ है भक्ति का। वो ही केवल शांति दे सकती है मानव मात्र को। शांति कौन दे सकता है? भक्ति दे सकती है। और ये ही जीवन की परम सिद्धि है। यहां हमारा आज का कार्य पूरा होता है तीन श्लोकों का। तो अब ये प्रश्न क्या था इसके ऊपर, इस श्लोक के ऊपर प्रश्न क्या था?
श्लोक 29 में दिए गए शांति सूत्रों को समझाइए।
हाँ,
सुनील शब्दों का विशेष महत्व क्या है?
कौन से शब्द का?
सुनील।
ओ, सुहृद शब्द का मुझे मुख्य भगवान सबके सब चिंतक, शुभ चिंतक है। भक्तों के माध्यम से भक्ति का कृपा करके संदेश देते हैं, ये हमने चक्रवर्ती पाद के शब्दों में पढ़ा। तो भक्ति का सूत्र क्या है? हाँ, शांति का सूत्र क्या है? कृष्ण भोगता है, कृष्ण परम सब लोकों का और देवताओं का महेश्वर है और सबका शुभ चिंतक है। जो इसको जानेगा और मानेगा वही शांति प्राप्त करेगा। फिर आप समझाइए कि यज्ञ क्या है, यज्ञ का भोक्ता कैसे है, तप का भोक्ता कैसे है, और झगड़े का कारण क्या है संसार में? भोक्ता के कारण झगड़ा हो रहा है और स्वामित्व के कारण झगड़ा हो रहा है। जब ये समझ जाएंगे भगवान है तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। और सौहृद भगवान है, इसका मतलब सबका शुभ चिंतक है, सबके हृदय में बैठा है। और चक्रवर्ती पाद की ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, अगर लिखेंगे तो भगवान सबका सौहृद है, अपने भक्तों के माध्यम से कृपा करके भक्ति का उपदेश देता है। यह है चक्रवर्ती पाद का भाव। परमात्मा चुप करके बैठा देखता है कुछ जो करो, भगवान है वो कृपा करता है, परमात्मा कृपा नहीं करते। परमात्मा कृपा नहीं करते, चुप करके बैठ के देखते रहते टुकुर टुकुर क्या कर रहे हो बस, और कुछ नहीं करते। ब्रह्म तो ब्रह्म भी कुछ नहीं करता, परमात्मा भी कुछ नहीं करते, भगवान ही केवल आपके साथ आदान प्रदान करते। चलो अब 5 मिनट बचे हैं, एक श्लोक के ऊपर कोई बोलेगा और तब वो पानी गर्म हो गया सबको पिलाना शुरू करो। हरे कृष्ण। कल 6th अध्याय का शुभ आरंभ करेंगे कृष्ण बलराम की कृपा से।